अगले दिन सुबह इप्सिता परीक्षा देने निकली। अभिमन्यु भी उसके साथ कॉलेज छोड़ने गया। इप्सिता ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु भी जबरदस्ती कुछ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए कार में सन्नाटा छाया रहा। दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे। इप्सिता जानबूझकर खिड़की से बाहर देख रही थी। कॉलेज पहुंचते ही कार गेट पर रुकी और इप्सिता बाहर उतरी। उतरते ही अभिमन्यु दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए बोला, इप्सिता बेस्ट ऑफ लक। इप्सिता ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, थैंक यू। इतना कहकर इप्सिता कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु उसके व्यवहार से समझ गया कि वो कल रात की बात से परेशान है। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, शायद हमें इप्सिता से ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हम अभी भी अवंतिका को पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब शादी इप्सिता से ही करनी है। हम मासा को दिए वचन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ, इप्सिता को समझा सकते हैं। वैसे भी अब जब वो हमारी पत्नी बनने वाली है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें अनवांटेड फील ना होने दें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। ये सोचकर अभिमन्यु कार में बैठा। तभी उसे एक विचार आया और उसने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। इसी बहाने इप्सिता के साथ थोड़ा समय बिता पाएंगे। इप्सिता काफ़ी परेशान थी, इसलिए उसका एग्ज़ाम पहले के जितना अच्छा नहीं गया, लेकिन ठीक ठाक था। उसे विश्वास था कि वो पास हो जाएगी। एग्ज़ाम खत्म करने के बाद नंदिनी के साथ वो हॉल से बाहर निकल ही रही थी कि ध्रुव वहाँ खड़ा दिखा। वो ऐसा लग रहा था मानो वो उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहा हो। इप्सिता और नंदिनी ध्रुव के पास जाकर बोली, क्या बात है ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी था, फिर तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो? ध्रुव ने नंदिनी और इप्सिता दोनों को साइड हग करते हुए कहा, अरे तुम दोनों का आज आखिरी एग्ज़ाम था ना, और ईशु तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तो फिर तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें गुड बाय बोलने आ जाओ। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ कि आ गए तुम, वरना सच में अब शायद ही हमें दोबारा मुंबई आने का मौका मिले। ध्रुव इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, हम भी। ध्रुव और इप्सिता बात ही कर रहे थे कि ध्रुव का एक दोस्त आया और उसने कहा, ध्रुव तूने एक मॉडल से बात करने को कहा था ना, मैंने उसे बुलाया है, चलो मिल लेते हैं। ये सुनकर इप्सिता और नंदिनी एक दूसरे की ओर देखकर खुश होते हुए बोली, चलो तुम्हें तुम्हारी मॉडल मिल गई। ध्रुव काफ़ी मायूसी से बोला, क्या करूँ, अब किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो साफ मना कर दिया है। इप्सिता अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, क्या करूँ, हमारे पास और कोई विकल्प होता तो शायद हम तुम्हें इस तरह मना नहीं करते, लेकिन क्या बताएं, शायद मॉडलिंग हमारी किस्मत में नहीं है, और जब किस्मत में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ध्रुव इप्सिता की आंखों में देखने लगा। नंदिनी और ध्रुव दोनों उसकी भावनाओं को समझ रहे थे कि वो अपना सपना छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी घर वालों की वजह से वो अपने सपने की कुर्बानी दे रही थी। नंदिनी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, ओहो कोई बात नहीं ईशु, हो सकता है भविष्य में तुझे दोबारा मॉडलिंग का मौका मिल जाए। इप्सिता ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेकार की बातें मत करो नंदिनी, और चलो काफ़ी समय हो गया है। अच्छा ध्रुव, अब हम चलते हैं, बाय। नंदिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि इप्सिता ने उसे मौका नहीं दिया और वहां से निकल गई। नंदिनी ने देखा कि इप्सिता के लिए कार पहले से ही खड़ी थी। नंदिनी ने कहा, ठीक है तू भी चल, मैं भी बहुत थक गई हूँ और एग्ज़ाम खत्म हुए हैं तो थोड़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, और तू घर पहुँचकर मुझसे बात करना। इप्सिता ने सिर हिलाया और नंदिनी हॉस्टल के लिए निकल गई। इप्सिता कार में बैठ गई। उसने देखा अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इप्सिता अभिमन्यु को देखकर बोली, आप? इप्सिता तुरंत कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और अभिमन्यु की बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, सॉरी हमें लगा आप नहीं हैं इसलिए हम पीछे बैठ गए। अभिमन्यु ने कहा, कोई बात नहीं। इतना कहकर अभिमन्यु ने गाड़ी चलाना शुरू किया। इप्सिता ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप यहाँ हमें लेने क्यों आए, ड्राइवर को क्यों नहीं भेजा आपने? अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि हमें आपके साथ थोड़ा समय बिताना था, इसीलिए हमने सोचा आपको कहीं बाहर ले चले। इप्सिता हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, कहीं बाहर, मतलब हम घर नहीं जा रहे हैं क्या? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। इप्सिता थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछी, तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? अभिमन्यु ने कहा, बस थोड़ी देर वेट करिए, अभी खुद ही आपको पता चल जाएगा। इप्सिता ने यह सुनकर कुछ नहीं बोला और खिड़की से बाहर देखने लगी। इप्सिता ने मन में सोचा, हमारे साथ समय क्यों बिताना चाहते हैं अभिमन्यु, जब उनके दिल में अभी भी अवंतिका है तो फिर क्या फ़ायदा हमारे साथ समय बिताकर। इप्सिता के मन में यही बातें चल रही थी, वो अभिमन्यु की ओर नहीं देख रही थी। थोड़ी देर में अभिमन्यु ने एक बीच पर कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर इप्सिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलिए। इप्सिता कार से बाहर निकलते हुए बोली, आप हमें यहाँ बीच पर क्यों ले आए हैं? अभिमन्यु ने कहा, अब कल हमें यहाँ से उदयपुर जाना है तो हमने सोचा आपको कहीं घुमा लाते हैं, मुंबई की कोई यादगार पल तो हो हमारे पास। इप्सिता ने कहा, हम कल ही वापस चल रहे हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमने तो फ्लाइट टिकट बुक कर ली है, क्या आपको अभी नहीं चलना? अगर आपको कुछ दिन और यहाँ रुकना हो तो बताइए, हम कैंसिल कर देंगे। देंगे। इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है टिकट कैंसिल करने की, वैसे भी अब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो यहाँ रुककर हम क्या ही करेंगे। इप्सिता इतना कहकर चुपचाप आगे चलने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, इप्सिता वैसे आप तो काफी समय यहाँ रही हैं, तो आप तो इस तरह के बीच पर आती ही होंगी ना। इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम नंदिनी और अपने दोस्तों के साथ कई बार यहाँ आ चुके हैं। इप्सिता इतना बोलते हुए सीधे चल रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, तो बताइए आप यहाँ क्या क्या खा सकती हैं। इप्सिता हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन आपको तो ऐसे रोड साइड का खाना पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे खाएंगे। अभिमन्यु धीमी आवाज में बोला, अरे आपके साथ तो हम कहीं पर कुछ भी खा लेंगे। इप्सिता ने यह सुनकर उसकी ओर देखने लगी। उसने अभिमन्यु की बात सुन ली थी, फिर भी पूछा, क्या कहा आपने। अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बताइए आप जब अपनी दोस्तों के साथ यहाँ आती हैं तो क्या खाती थी। जैसे ही अभिमन्यु ने यह बात पूछी, इप्सिता की नज़र बीच के किनारे एक छोटे से स्टॉल पर लगे भुट्टा भून रहे अंकल पर पड़ी। इप्सिता उन्हें देखकर खुश होते हुए बोली, आप भुट्टा खाएंगे। अभिमन्यु ने कहा, क्या आपको भुट्टा खाना पसंद है, हमने तो आज तक नहीं खाया ऐसे बाहर का। इप्सिता ने कहा, हाँ मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, चलिए आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको अच्छा लग जाए। इप्सिता ने इतना कहा और उस भुट्टे के स्टॉल पर जाकर बोली, भैया दो भुट्टे लगाइए, एक स्पाइसी रखिएगा और एक नॉर्मल। वो आदमी गरम गरम भुट्टे बनाकर इप्सिता को देने लगा। इप्सिता ने उसे पैसे दिए। वो अभिमन्यु को भुट्टा पकड़ाते हुए बोली, मैंने आपका नॉर्मल रखवाया है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसे आराम से खा लेंगे। अभिमन्यु उसे लेते हुए बोला, थैंक्स। अभिमन्यु को यह जानकर अच्छा लगा कि इप्सिता को याद था कि वो स्पाइसी नहीं खा पाता था। इप्सिता पास में बनी बेंच पर बैठ गई, अभिमन्यु भी उसके बगल में बैठा। इप्सिता आराम से भुट्टा खा रही थी। अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लग रहा था, जब उसने उसे ट्राई किया तो उसे वो काफी अच्छा लगा। उसने इप्सिता की ओर देखकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा आपका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली हम आपसे कल की बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। इप्सिता ये सुनकर खाते खाते रुक गई और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी।
तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली हमने आपसे जो कहा उसे लेकर बिल्कुल भी असुरक्षित मत महसूस करिएगा। एक्चुअली अवंतिका हमारा अतीत थी और हम अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य में नहीं लाना चाहते। हमने आपको वो सारी बातें इसीलिए बता दी ताकि शादी के बाद आपको ऐसा न लगे कि हमने आपसे कुछ छुपाया है। इप्सिता अभिमन्यु की ओर थोड़ी कन्फ्यूज होकर देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली जब अवंतिका हमें छोड़कर गई थी उसके बाद से ही हमने सोच लिया था कि अब हमारी जिंदगी में और कोई भी लड़की नहीं आएगी, लेकिन जब मासा ने आपको हमारे लिए चुना तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि कुंवर की जिम्मेदारियां और कई वजह से हमारी शादी होना जरूरी है, लेकिन अब हमें लग रहा है शायद मासा ने सही फैसला लिया है। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर इप्सिता थोड़ी खुश हुई। तभी अभिमन्यु ने कहा, हमने कल जिस तरह से अवंतिका को लेकर बात की वो सुनकर किसी का भी बुरा मानना जायज था, और आप तो अब हमारी होने वाली पत्नी है तो हमें लगा शायद आपको भी हमारी बात बुरी लगी होगी। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्सिता ने विषय बदलते हुए कहा, आपने हमसे आकर ये बात कही उसके लिए थैंक्स, लेकिन आपको अब कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि अवंतिका आपकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण थी। अभिमन्यु ने कहा, हाँ थी, क्योंकि हमने उसके अलावा किसी भी लड़की के साथ अपना भविष्य नहीं सोचा था। इप्सिता अवंतिका के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उठकर खड़ी हुई और बात बदलते हुए अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, कभी आपने बीच की रेत पर नंगे पैर चलकर देखा है। अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। इप्सिता ने झुककर अपनी सैंडल उतारी और अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, हाँ पता था मुझे आपने नहीं किया होगा, इसीलिए अभी हमारे साथ एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत रिलैक्स फील होता है। रेत की हल्की गर्माहट जब पैरों पर लगती है तो शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, एक बार ट्राई करके देखिए। इतना बोलते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अभिमन्यु उसके चेहरे की ओर देखने लगा। वो काफी खुश लग रही थी और उसे खुश देखकर अभिमन्यु को भी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि इप्सिता को हमेशा इस तरह खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और हमेशा उसे ऐसे खुश मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। क्रमशः